न्यूलैंड आर्चर पूर्वी 39वीं स्ट्रीट के अपने पुस्तकालय की मेज पर बैठा था। वो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में नई दीर्घाओं के उद्घाटन समारोह से लौटा ही था। उन विशाल कक्षों में अनगिनत युगों की वस्तुएं भरी थीं और वर्गीकृत खजानों के बीच फैशन परस्त भीड़ के दृश्य ने उसके भीतर स्मृति की एक पुरानी जंग लगी कमानी दबा दी। अरे, ये तो पहले चेस्नोला वाले कक्षों में से एक था, किसी को कहते सुना, और उसी क्षण चारों ओर सब कुछ मिट गया। वो फिर अकेला रेडिएटर से टिका सख्त चमड़े के सोफे पर था और सील की खाल के लंबे लबादे में एक दुबली आकृति पुराने संग्रहालय के गलियारों में दूर जा रही थी।
इस दृश्य ने कई यादें जगाई और उसने पुस्तकालय को नई नजर से देखा, जहां 30 साल से उसका एकांत चिंतन और परिवार की बातचीत होती रही थी। उसके जीवन की लगभग सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी कमरे में घटी थीं। यहीं लगभग 26 साल पहले पत्नी ने ऐसे संकोची घुमाव फिराव से, जिन पर आज की लड़कियां मुस्कुराती, बताया था कि वो गर्भवती है। उसी सर्दी में यही पहले बेटे डलास का बपतिस्मा हुआ, जिसे सर्दी के डर से गिरजे न ले जाया जा सका। बपतिस्मा पुराने मित्र न्यूयॉर्क के बिशप ने दिया। वो भव्य और अपूर्णीय धर्माध्यक्ष जो लंबे समय तक धर्म प्रांत का गौरव रहे, यही डलास ने पहली लड़खड़ाती चाल में पापा पुकारा था और मैं तथा आया दरवाजे के पीछे हंसती रही, और यही दूसरी संतान मेरी जो माँ की हूबहू प्रतिकृति थी।
मेरेगी चिवर्स के कई बेटों में से सबसे उबाऊ और सबसे भरोसेमंद बेटे से अपनी सगाई की घोषणा की थी, और आर्चर ने ग्रेस गिरजे ले जाने वाली गाड़ी तक उतरने से पहले उसके दुल्हन के घूंघट के आर पार उसे चूमा था। जिस दुनिया में सब कुछ बदल रहा था, वहां ग्रेस गिरजे में विवाह अटल परंपरा बनी रही। उसी पुस्तकालय में वो और मैं बच्चों के भविष्य पर बात करते, डलास और छोटे भाई बिल की पढ़ाई, संस्कृति में मेरी की अरुचि और खेल तथा दान के प्रति उत्साह, और कला में वो धुंधली दिलचस्पी जो बेचैन डलास को न्यूयॉर्क के एक युवा वास्तुकार के दफ्तर तक ले गई। आजकल के नौजवान कानून और व्यापार से हटकर तरह तरह की नई चीजें आजमा रहे थे। जब वे राज्य की राजनीति या नगर सुधार में नहीं कूदते, तो मध्य अमेरिका की पुरातत्व विद्या, वास्तुकला या भूदृश्य अभियांत्रिकी में लग जाते। वे अपने देश की क्रांति पूर्व वास्तुकला में विद्वत्तापूर्ण रुचि रखते, जॉर्जियन शैली अपनाते और औपनिवेशिक शब्द के निरर्थक प्रयोग का विरोध करते। आजकल उपनगरों के धनी परचूनियों के सिवा किसी के पास औपनिवेशिक घर नहीं थे।
पर सबसे बढ़कर कभी कभी आर्चर इसे सबसे महत्वपूर्ण मानता। इसी पुस्तकालय में न्यूयॉर्क के गवर्नर ने, जो अल्बानी से भोजन और एक रात को आए थे, मेज पर मुक्का मारा और चश्मा पोंछते हुए कहा, उन राजनीति के सौदागरों को हटाना होगा। आर्चर, देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है। अस्तबल साफ करने का वक्त आ गया है, तो आप जैसों को आस्तीन चढ़ानी होगी। आप जैसे लोग, इस बात ने उसे कितना भाव विभोर किया था। उस पुकार पर वो कितने उत्साह से उठ खड़ा हुआ था। ये उन्हीं शब्दों की गूंज थी जो वर्षों पहले नेड विंसेंट ने कहे थे, आस्तीन चढ़ाकर कीचड़ में उतरने का निमंत्रण। पर इस बार पुकारने वाला वही था जो उस निमंत्रण को स्वयं निभा रहा था, और उसके पीछे चलने का आदेश अस्वीकार्य न था।
पीछे मुड़कर देखने पर आर्चर को यकीन नहीं था कि उस जैसे लोग सचमुच उसके देश के लिए जरूरी थे, कम से कम उस सक्रिय भूमिका में नहीं जिसकी ओर थियोडोर रूजवेल्ट इशारा करते थे। दरअसल ये मानने के कारण भी थे कि ऐसा नहीं था। राज्य विधानसभा में एक वर्ष रहने के बाद वो दोबारा नहीं चुना गया। कृतज्ञ होकर वो शांत पर उपयोगी नगर कार्य में लौटा और वहां से देश की उदासीनता झिंझोड़ने वाली एक सुधारवादी साप्ताहिक पत्रिका में कभी कभी लिखने लगा। पीछे देखने को बहुत कुछ न था, पर जब वो अपनी पीढ़ी और आसपास के नौजवानों को याद करता, जो भविष्य को केवल पैसे, खेल और सामाजिकता की संकरी झिरी से देखते थे, तो लगता कि उसने भी नई दुनिया में कुछ जोड़ा है। उसका छोटा योगदान भी अच्छी तरह चुनी दीवार की हर ईंट जितना मूल्यवान था। उसने सार्वजनिक जीवन में बड़े काम नहीं किए और स्वभाव से वो सदा चिंतनशील और शौकीन ही बना रहेगा, पर उसने ऊंचे मूल्यों का चिंतन किया, बड़ी चीजों का आनंद लिया और एक महान मित्र पाया जिसने उसे शक्ति और गर्व दिया।
संक्षेप में वो वही बन गया था जिसे लोग धीरे धीरे आदर्श नागरिक कहने लगे थे।
न्यूयॉर्क में वर्षों तक हर नए आंदोलन, हर दान कार्य, हर नगर सुधार या कलात्मक उद्यम को उसकी राय चाहिए थी और उसका नाम चाहिए था। जब कोई दिव्यांग बच्चों के लिए पहला स्कूल बनाना, कला संग्रहालय को नए सिरे से जमाना, ग्रोलियर क्लब की स्थापना, नया पुस्तकालय खोलना या नया वादन संगीत समाज बनाना चाहता, तो लोग कहते, आर्चर से पूछो। उसके दिन भरे पूरे थे और गरिमा के साथ भरे थे। उसे लगता कि एक आदमी के लिए ये पर्याप्त जीवन है, पर वो जानता था कि उससे कुछ छूट गया है, जीवन का फूल ही। फिर भी अब वो उसे इतना अप्राप्य और असंभाव्य लगता कि उसका शोक करना लॉटरी का पहला इनाम न मिलने पर निराश होने जैसा होता। उसकी लॉटरी में 10 करोड़ टिकट थे और इनाम केवल एक। संभावनाएं स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में नहीं थी। जब वो एलन ओलेंस्का को याद करता तो अमूर्त और शांत भाव से, जैसे कोई किसी किताब या चित्र की काल्पनिक प्रेमिका को याद करे, वो उन सब चीजों का सम्मिलित प्रतिबिंब बन गई थी जो उससे छूट गई। और वो प्रतिबिंब धुंधला और नाजुक होते हुए भी उसे दूसरी स्त्रियों के बारे में सोचने से रोके रहा।
वो वही था जिसे निष्ठावान पति कहते हैं। और जब सबसे छोटे बच्चे की सेवा करते हुए लगे संक्रामक निमोनिया से मैं अचानक चल बसी, तो उसने सच्चे मन से शोक किया। लंबे वैवाहिक जीवन में दोनों ने जाना था कि विवाह चाहे नीरस कर्तव्य हो, उस कर्तव्य की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। वो गरिमा खो जाए तो विवाह कुरूप वासनाओं की लड़ाई भर रह जाता है। उसने चारों ओर देखा, अपने पुराने स्वरूप का आदर किया और उसका शोक मनाया। आखिर पुराने ढंग में भी कुछ अच्छा था। उसकी दृष्टि कमरे में घूमी, डलास के नए लगाए अंग्रेजी मेजोटेंट चित्रों से, चिपेंडेल अलमारी से, सावधानी से चुने नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों से और मंद चमकते बिजली के लैंपों से होती हुई, और लौटी उस पुरानी ईस्ट लेक मेज पर जिसे वो कभी छोड़ न सका, और स्याही दान के पास आज भी रखी मे की पहली तस्वीर पर। वहां वो थी, लंबी भरे वक्ष और लचीली देह वाली, कड़क कल्फ लगी मलमल की पोशाक और हवा में फहराती हैट पहने, ठीक वैसी ही जैसी उसने मिशन के बाग में संतरे के पेड़ों तले पहली बार देखी थी।
और उस दिन जैसी उसने देखी थी वैसी ही वो बनी रही, हमेशा एक सी नहीं पर उससे बहुत दूर भी नहीं, उदार, निष्ठावान, अथक, पर उसमें कल्पना की कमी थी और बढ़ने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उसकी जवानी की दुनिया टूटकर फिर से बनी और उसे इस बदलाव का जरा भी भान न हुआ। उसके ठोस और उजले अंधेपन ने उस निकट क्षितिज को जिसे वो देखती थी अपरिवर्तित बनाए रखा। चूंकि वो बदलाव नहीं पहचानती थी, बच्चों ने अपने विचार उससे छिपाए और आर्चर ने भी। इस तरह शुरू से ही एक साझा दिखावा पैदा हुआ कि सब कुछ पहले जैसा ही है, एक तरह का मासूम पारिवारिक पाखंड जिसे पिता और बच्चे अनजाने बुनते रहे, और वो दुनिया को प्रेम और सामंजस्य भरे परिवारों से भरा अच्छा स्थान मानकर चली गई। उसे भरोसा था कि न्यूलैंड डलास में वही सिद्धांत और पूर्व ग्रह भरता रहेगा जिन्होंने उनका जीवन गढ़ा, और न्यूलैंड के जाने के बाद डलास वो पवित्र विरासत नन्हे बिल को सौंपेगा। मेरी के बारे में भी वो अपने जितनी ही आश्वस्त थी, इसलिए नन्हे बिल को बीमारी से बचाकर और उसी प्रयास में अपना जीवन देकर वो संतोष के साथ सेंट मार्क्स स्थित आर्चर परिवार की कब्र में गई, जहां श्रीमती आर्चर पहले से लेटी थी, उस भयानक बहाव से सुरक्षित जिसे उसकी बहू कभी समझ ही न सकी।
मैं के चित्र के सामने उसकी बेटी मेरी चीवर्स का चित्र था। मेरी चीवर्स माँ की तरह लंबी और सुनहरे बालों वाली थी, पर समय के बदलाव के अनुरूप उसकी कमर चौड़ी, छाती चपटी और कंधे थोड़े झुके हुए थे। मेरी चीवर्स के बड़े खेल कौशल उस 20 इंच की कमर के साथ कभी संभव न होते, जिसे मैं आर्चर का आसमानी फीता आसानी से लपेट लेता था। और इस अंतर में प्रतीकात्मक अर्थ था, माँ का जीवन उसकी देह जितना ही कसा हुआ था, मेरी उतनी ही रूढ़िवादी थी और अधिक बुद्धिमान भी नहीं, पर उसका जीवन बड़ा था और उसके विचार अधिक सहिष्णु। नई व्यवस्था में भी कुछ अच्छा था। टेलीफोन बजा। आर्चर ने तस्वीरों से नजर हटाई और पास रखा चोंगा उठाया। पीतल के बटनों वाला संदेशवाहक लड़का जब न्यूयॉर्क का एकमात्र तेज संचार साधन था, उन दिनों से कितनी दूर आ गए थे। शिकागो से फोन है। अरे डलास होगा,
कंपनी ने उसे शिकागो भेजा था ताकि मौलिक विचारों वाले एक युवा करोड़पति के लिए बनने वाले झील किनारे के महल की योजना पर बात हो। ऐसे काम कंपनी हमेशा डलास को ही सौंपती थी।
नमस्ते पापा। हाँ, डलास बोल रहा हूँ।
बुधवार को जहाज लेना कैसा रहेगा?
मॉरिटेनिया से।
हाँ, अगले बुधवार। हमारे ग्राहक चाहते हैं कि तय करने से पहले मैं कुछ इतालवी बाग देख आऊं। उन्होंने कहा है कि पहले ही जहाज से जाकर लौट आऊं। मुझे 1 जून तक वापस होना है। वो खुशी से हंस पड़ा और बोलता रहा, तो जल्दी करनी होगी। पापा, आपसे मदद मांग रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। डलास की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वो कमरे में ही बोल रहा हो, इतनी पास जैसे अंगीठी के पास आराम कुर्सी में धसा बैठा हो। आम तौर पर ये फोन आर्चर को अचरज में न डालता। लंबी दूरी की बात बिजली की रोशनी या 5 दिन में अटलांटिक पार करने जितनी साधारण हो चुकी थी, पर उस हंसी ने उसे चौंका दिया। अनगिनत जंगलों और नदियों, पहाड़ों और मैदानों, व्यस्त शहरों और उदासीन भागती भीड़ों के पार से डलास की हंसी ये कह सके, ये उसे अब भी चमत्कार लगता था। बेशक कुछ भी हो जाए, पहली तारीख तक लौटना ही है। फैनी बोफर और मेरी शादी 5 को है।
आवाज फिर आई, सोचेंगे? नहीं पापा,
अभी जवाब दीजिए। मना करने का एक भी कारण हो तो सुनना चाहूंगा। नहीं, समझ गया। तो तय रहा, कल सुबह जल्दी क्यूनार्ड के दफ्तर फोन करके जगह बुक करा दीजिए और लौटने का टिकट मार्सल से लेना ठीक रहेगा। शायद ये आखिरी बार हो जब हम दोनों यूं अकेले साथ हों। अरे बढ़िया, मुझे पता था आप हाँ कहेंगे। शिकागो की बात कटते ही आर्चर उठा और कमरे में टहलने लगा। बेटे के साथ यूं अकेले होने का ये आखिरी मौका होगा। लड़का ठीक कहता था, डलास की शादी के बाद भी कई और मौके आएंगे। पिता को इसका विश्वास था। दोनों जन्मजात साथी थे और फैनी बोफर चाहे जैसी हो उनकी घनिष्ठता में बाधा बनती नहीं लगती थी। उल्टे जितना आर्चर देख पाया वो स्वाभाविक रूप से उस घनिष्ठता में शामिल हो जाएगी। पर बदलाव तो बदलाव है और अंतर तो अंतर। भावी बहू के प्रति खिंचाव के बावजूद बेटे के साथ अकेले रहने के आखिरी अवसर को पकड़ने का लोभ छोड़ना कठिन था।
इस अवसर को न पकड़ने का कोई सच्चा कारण न था,
बस यात्रा की आदत छूट गई थी। मैं को बच्चों को समुद्र या पहाड़ ले जाने जैसे उचित कारण के बिना हिलना पसंद न था। 39वीं स्ट्रीट का आरामदेह घर या न्यूपोर्ट का वेलैंड घर छोड़ने का उसे कोई कारण नहीं दिखता था। डलास की पढ़ाई पूरी होने पर उसने इसे अपना कर्तव्य माना और वे 6 महीने की यात्रा पर गए। पूरा परिवार इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और इटली का शास्त्रीय यूरोपीय चक्कर लगा आया। समय सीमित था और किसी को कारण पता न चला फ्रांस छोड़ना पड़ा। आर्चर को याद आया कि रैंस और शार्त्र देखने के इच्छुक डलास को बदले में मोंट ब्लांक का सुझाव मिलने पर वो कितना बिफरा था। पर मेरी और बिल पहाड़ चढ़ना चाहते थे और अंग्रेजी गिरजे घूमते घूमते ऊब चुके थे। बच्चों के साथ हमेशा न्याय करने की इच्छुक मैं ने उनके खेल प्रेम और कला प्रेम में संतुलन बिठाने की कोशिश की। उसने ये तक सुझाया कि पति पेरिस में 2 हफ्ते बिताए और जब वो बच्चे स्विट्जरलैंड निपटा लें तो इतालवी झीलों पर आ मिले। पर आर्चर ने मना कर दिया। हम साथ रहेंगे, उसने कहा, और मे के चेहरे पर डलास को अच्छा उदाहरण देने की प्रसन्नता दिखी।
अब उसके गुजरे लगभग 2 साल बाद वही दिनचर्या जारी रखने का कोई कारण न था। बच्चे चाहते थे कि पिता यात्रा पर जाएं। मेरी चिवर्स को यकीन था कि विदेश जाकर संग्रहालय देखना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। इस उपचार का रहस्यमय होना उसे और भी आश्वस्त करता था। पर आर्चर को आदत, यादों और नए के अचानक भय ने जकड़ रखा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे दिखा कि वो कितनी गहरी लीक में फंस चुका था। कर्तव्य निभाने की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो आदमी को बाकी किसी काम के लायक ही नहीं छोड़ता। कम से कम उसकी पीढ़ी के पुरुषों की स्थिति यही थी। सही और गलत, ईमानदारी और बेईमानी, आदरणीय और उसके विपरीत के बीच की स्पष्ट रेखा अप्रत्याशित के लिए बहुत कम जगह छोड़ती थी। कभी कभी आदमी की कल्पना, जो अपने परिवेश से आसानी से दब जाती है, अचानक रोजमर्रा के स्तर से ऊपर उठकर नियति के लंबे उलझे मोड़ों को देख लेती है। आर्चर वहीं अटक कर रुक गया और सोचता रहा।
जिस छोटी दुनिया में वो पला, जिन मानदंडों ने उसे झुकाया और बांधा, उनमें से क्या बचा था? उसे वर्षों पहले इसी कमरे में बेचारे लॉरेंस लेफर्ट्स की व्यंग्य भरी भविष्यवाणी याद आई।
इसी तरह चलता रहा तो हमारे बच्चे बोफर की नाजायज संतानों से ब्याह करेंगे। और ठीक इसी समय आर्चर का बड़ा बेटा उसका गर्व वही कर रहा था। फिर भी किसी को अचरज न हुआ, न किसी ने निंदा की। हमेशा बूढ़ी दिखती जवानी से जरा न बदली जैनी बुआ ने भी माँ के पन्ने और मोती गुलाबी रुई से निकालकर कांपते हाथों से भावी दुल्हन को दे दिए। और फैनी बोफर पेरिस के जौहरी का सेट न मिलने से निराश होने के बजाय उनकी पुरातन सुंदरता पर मुग्ध हुई और बोली कि इन्हें पहनकर वो खुद को इजाबे के चित्र की नायिका सा महसूस करेगी।
माता पिता की मृत्यु के बाद 18 की उम्र में न्यूयॉर्क आई फैनी बोफर ने शहर का दिल वैसे ही जीत लिया जैसे 30 साल पहले मैड ऑलिंस का ने। बस अंतर ये कि लोगों ने उसे सशंक या भयभीत होकर नहीं, प्रसन्नता से अपनाया। वो सुंदर थी, प्रफुल्ल थी, प्रतिभावान थी। इससे अधिक और क्या चाहिए? उसके पिता के अतीत और उसके अपने मूल के अधकचरे भुला दिए तथ्यों को खोद निकालने जितना संकीर्ण कोई ना था। केवल बुजुर्ग याद करते थे कि न्यूयॉर्क के व्यापार में बोफर कैसे डूबा और पत्नी की मृत्यु के बाद चुपचाप कुख्यात फैनी रिंग से विवाह कर नई पत्नी और सुंदरता पाई बेटी को लेकर चला गया। फिर कॉन्स्टेंटिनोपल से, फिर रूस से खबरें आई और लगभग 12 साल बाद ब्यूनस आयर्स से, जहां वो एक बीमा एजेंसी का प्रतिनिधि था और अमेरिका से आए यात्रियों की शानदार मेजबानी करता था। वहीं समृद्धि के बीच वो पत्नी सहित मर गया और एक दिन उनकी अनाथ बेटी में आर्चर की भाभी श्रीमती जैक वेलेंड के संरक्षण में न्यूयॉर्क आ पहुंची। जैक वेलेंड को लड़की का संरक्षक नियुक्त किया गया जिससे वो न्यूलैंड आर्चर के बच्चों की लगभग चचेरी बहन जैसी हो गई। इसलिए डलास की सगाई की घोषणा पर किसी को अचरज ना हुआ। दुनिया कितनी दूर आ गई इसे इससे साफ कुछ नहीं दिखा सकता था। आजकल लोग बहुत व्यस्त थे सुधारों, आंदोलनों, फैशनों, अंधविश्वासों और हजार छोटी बातों के बीच पड़ोसी की चिंता का समय न था। जिस विशाल बहुरूप दर्शक में सारे सामाजिक अणु एक ही तल पर घूमते हों, वहां किसी के अतीत का क्या अर्थ?
न्यूलैंड आर्चर ने होटल की खिड़की से पेरिस की सड़कों की सुरुचिपूर्ण हलचल देखी और महसूस किया कि उसका दिल उलझन और लालसा से धड़क रहा है। हर साल चौड़ी होती बनियान के नीचे उसका दिल बहुत दिनों से यों नहीं गिरा उछला था। अगले ही क्षण उसे सीने में खालीपन और कनपटियों में गर्मी महसूस हुई। उसने सोचा कि क्या उसका बेटा फैनी बोफर के पास ऐसा ही महसूस करता है और तय किया कि नहीं, दिल तो जरूर खूब चलेगा पर लय अलग होगी, उसने सोचा। बेटे की उस ठंडी शांति को याद करते हुए जिससे उसने सगाई की सूचना दी थी, परिवार का आशीर्वाद स्वतः मानते हुए। अंतर ये है कि ये नौजवान मान लेते हैं कि जो चाहेंगे मिल जाएगा, जबकि हमारी पीढ़ी लगभग हमेशा मान लेती थी कि नहीं मिलेगा। पर एक बात सोचता हूँ, जिस चीज का पहले से इतना यकीन हो, क्या वो दिल को इतनी जोर से धड़का सकती है? ये पेरिस पहुँचने के अगले दिन की बात थी। बसंत की धूप उसे चौड़े चांदी सी चमकते वांदोम चौक की ओर खुली खिड़की पर रोके थी। डलास के साथ विदेश जाने पर सहमत होते समय उसने लगभग एकमात्र शर्त यही रखी थी कि पेरिस में नवीनतम फैशन के महलों में नहीं ठहरेगा। अरे बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, डलास ने सहर्ष माना। आपको किसी बढ़िया पुराने ठिकाने पर ले चलूंगा, ब्रिस्टल जैसी जगह। ये सुनकर पिता की बोलती बंद हो गई कि जहाँ 100 साल से अधिक राजा सम्राट ठहरे उसे अब पुराना सराय कहा जाता है, जहां लोग असुविधाओं और बची स्थानीय रंगत का मजा लेने जाते हैं।
शुरुआती वर्षों में आर्चर ने बेचैनी से कई बार पेरिस लौटने का दृश्य कल्पित किया था। फिर वो निजी कल्पना धुंधली पड़ गई और वो शहर को केवल मैडम ओलेंस्का के जीवन की पृष्ठभूमि के रूप में देखना चाहता था। रात में घर के सो जाने पर पुस्तकालय में अकेले बैठे बैठे वो चेस्टनट की सड़कों पर फूटती बसंत की चमक, सार्वजनिक बागों के फूल और प्रतिमाएं, फूल गाड़ियों से उठती लाइलैक की गंध, बड़े पुलों के नीचे भव्यता से बहती नदी और कलाओं, विद्याओं तथा सुखों से भरे शहर की सड़कें याद करता। अब वो दृश्य उसकी आंखों के आगे जगमगा रहा था, पर वो खुद को संकोची, पुराना और बेमेल महसूस कर रहा था। अपने सपनों के उस निर्मम और भव्य व्यक्ति के आगे बस धूसर धूल का कण। डलास ने प्रसन्नता से उसके कंधे पर हाथ रखा। नमस्ते पापा, सचमुच शानदार है ना? दोनों कुछ देर चुपचाप बाहर देखते रहे। फिर नौजवान बोला, वैसे आपके लिए एक संदेश है,
काउंटेस ओलेंस्का आज दोपहर 5:30 बजे हम दोनों की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसने ये हल्के लापरवाह ढंग से कहा, जैसे कल शाम फ्लोरेंस जाने वाली गाड़ी का समय बता रहा हो। आर्चर ने उसे देखा और उसकी युवा जीवंत आंखों में परनानी मिंगोट की शरारत की चमक दिखी।
अरे मैंने बताया नहीं, डलास ने आगे कहा। फैनी ने मुझसे कसम ली थी कि पेरिस में 3 काम जरूर करूंगा, ड्यूबुसी की नई धुनों की स्वर लिपि लाना, ग्रान गिन्योल जाकर नाटक देखना और मैडम ओलेंस्का से मिलना। आप जानते हैं कि जब बोफर ने फैनी को ब्यूनस आयर्स से असुनसियोन भेजा, तब मैडम ओलेंस्का ने उसके साथ बहुत भलाई की। पेरिस में फैनी का एक भी मित्र न था। मैडम ओलेंस्का ने उसके साथ स्नेह किया और छुट्टियों में घुमाया। मैंने सुना है वे पहली श्रीमती बोफर की घनिष्ठ मित्र थीं, और वे तो हमारी चचेरी बहन भी हैं। इसलिए आज सुबह निकलने से पहले मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप और मैं 2 दिन पेरिस में हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। आर्चर उसे ताकता रहा। तुमने उन्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ? बिल्कुल क्यों नहीं, डलास ने मजे से भौहें उठाई, और उत्तर न मिलने पर उसने पिता की बांह अपनी बांह में डालकर आत्मीय दबाव दिया। पापा बताइए ना, वे कैसी थीं?
बेटे की बेझिझक दृष्टि से आर्चर को अपना चेहरा तपता लगा। सच बताइए, आप और वे अच्छे दोस्त थे ना? क्या वे बहुत सुंदर नहीं थीं?
सुंदर? पता नहीं, वे अलग थीं। अरे यही तो, आखिर बात यही आती है ना? ऐसी कोई आती है तो वो अलग होती है, और कारण किसी को पता नहीं। फैनी के बारे में मैं ठीक यही महसूस करता हूँ। पिता एक कदम पीछे हटा और बांह छोड़ दी। फैनी के बारे में? पर बेटा यही तो चाहूंगा, बस मैं समझ नहीं पा रहा।
अरे पापा, पुराने जमाने के मत बनिए। क्या वे पहले आपकी फैनी नहीं थी?
डलास तन मन से पूरी तरह नई पीढ़ी का था। वो न्यूलैंड और मैं आर्चर का बड़ा बेटा था, फिर भी उसे गोपनीयता सिखाना असंभव रहा। रहस्य बनाने से फायदा क्या, उससे तो लोग और खोदबीन करते हैं। सतर्क रहने की सलाह पर वो यही जवाब देता, पर आर्चर उसकी आंखों में मजाक के पीछे छिपा पुत्र स्नेह देख सकता था।
मेरी फैनी, यानी वो स्त्री जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ देते?
बस छोड़ा नहीं, उसके अचरज भरे बेटे ने कहा। नहीं छोड़ा, आर्चर ने कुछ गंभीरता से दोहराया। ठीक, आखिर आपकी पीढ़ी ऐसी ही थी, पर माँ ने बताया था।
तुम्हारी माँ ने?
हाँ, मरने से 1 दिन पहले, जब उन्होंने मुझे अकेले बुलाया था, याद है? उन्होंने कहा था कि आपके साथ हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने कहा था, तब आपने वो छोड़ दिया था जो आप सबसे अधिक चाहते थे। आर्चर ने इन विचित्र शब्दों को चुपचाप स्वीकार किया। उसकी आंखें खिड़की के नीचे धूप से भरे चौक को शून्य भाव से देख रही थी। अंततः उसने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने मुझसे ये कभी नहीं मांगा।
अरे हाँ, मैं भूल गया, आप दोनों एक दूसरे से कुछ मांगते ही नहीं थे ना? एक दूसरे से कुछ कहते भी नहीं थे, बस बैठे रहते, एक दूसरे को देखते और अंदाजा लगाते कि भीतर क्या चल रहा है, जैसे एक दूसरे के लिए बहरे और गूंगे हों। फिर भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का मन हमसे कहीं अधिक जानते थे। हमारे पास तो अपना ही मन जानने का समय नहीं।
पर पापा, दलास रुका, आप मुझसे नाराज तो नहीं?
नाराज है तो गुस्सा छोड़िए और अनरी के यहाँ साथ दोपहर का खाना खाइए, मुझे बाद में वर्साय जाना है।
आर्चर बेटे के साथ वर्साय नहीं गया,
उसने दोपहर अकेले पेरिस घूमते बिताना बेहतर समझा। जीवन भर के उन संचित पछतावों और यादों को एक साथ झेलना था जिन्हें वो कभी शब्द न दे सका। कुछ देर बाद उसे डलास की बेतकल्लुफी का मलाल न रहा। आखिर ये जानना कि किसी ने उसका मन ताड़ लिया और उस पर करुणा की, उसके सीने पर कसी जंजीर खोल सा गया, और ये कि वो उसकी पत्नी थी, इसने उसे अकथनीय रूप से द्रवित किया। डलास में स्नेह भरी अंतर्दृष्टि थी, पर वो इस भाव को न समझ पाता। उस लड़के के लिए ये घटना शायद व्यर्थ त्याग और बर्बाद हुई शक्ति का दयनीय उदाहरण भर होती, पर क्या सचमुच बस इतना ही था? आर्चर शांज़ेलीज़े की एक बेंच पर देर तक बैठा सोचता रहा। उसके बगल से जीवन का प्रवाह बहता जा रहा था। कुछ ही गलियों दूर कुछ घंटों बाद एलेन ओलेंस्का प्रतीक्षा कर रही थी। वो कभी पति के पास नहीं लौटी, और वर्षों पहले जब पति मरा तब भी उसने अपना जीवन ढंग नहीं बदला। अब उन्हें अलग करने वाला कुछ न था, और उसी दोपहर वो उससे मिलने वाला था।
वो उठा और कॉनकॉर्ड चौक तथा तुइलरी बागों को पार कर लूव्र तक चला। उसने एक बार कहा था कि वो अक्सर लूव्र जाती है और वो ऐसी जगह कुछ समय बिताना चाहता था जहां शायद वो हाल ही में आई हो। एक घंटे से अधिक वो दोपहर की रोशनी में दीर्घाओं में घूमा और एक एक कर चित्र भूली भव्यता के साथ सामने आते गए और उसकी आत्मा को सौंदर्य की लंबी गूंज से भरते गए। आखिर उसका जीवन बहुत सूखा रहा था। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाले तिसियान के सामने उसने खुद से कहा, पर मैं अभी 57 का ही तो हूँ, और वो मुड़ गया। भरी गर्मी के ऐसे सपनों का समय बीत चुका था, पर उसके पास होने की धन्य शांति में मैत्री की चुपचाप फसल काटने का समय नहीं बीता था। उसने सोचा, वो उसी होटल लौटा जहां उसे और डलास को मिलना था।
और दोनों ने फिर कॉनकॉर्ड चौक और संसद तक जाने वाला पुल पार किया। पिता के मन में क्या चल रहा है, इससे अनजान डलास वर्साय के बारे में उत्साह से बोलता रहा। उसने वर्साय केवल एक बार सरसरी तौर पर देखा था, उन छुट्टियों में जब वो स्विट्जरलैंड यात्रा में छोटी जगहें एक साथ देखना चाहता था। इसीलिए उत्साह और आत्मविश्वासी समालोचना होंठों पर गड्ढमड्ढ निकल रही थी। उसे सुनते हुए आर्चर ने अपनी अपर्याप्तता और असमर्थता और गहराई से महसूस की। वो जानता था कि डलास मंदबुद्धि बालक नहीं है, पर बेटे में वो दक्षता और आत्मविश्वास था जो नियति को स्वामी नहीं बराबर मानने से आता है। बस यही है, आज की पीढ़ी खुद को हर चीज के बराबर समझती है और अपना रास्ता जानती है, आर्चर ने मन में दोहराया। डलास को उस नई पीढ़ी का प्रवक्ता मानते हुए जिसने पुराने मानदंड बहा दिए, उनके साथ सारे मील पत्थर और खतरे के संकेत भी मिट गए।
अचानक डलास रुका और पिता की बाह पकड़ ली। अरे देखिए, वे इनवैलिड के सामने के विशाल वृक्षों वाले चौक पर आ गए थे। मानसार का गुंबद कोंपलों भरे पेड़ों और इमारत के लंबे धूसर अग्रभाग पर रहस्यमय ढंग से तैर रहा था, मानो दोपहर की सारी रोशनी अपनी ओर खींचता हो। वो वहाँ किसी राष्ट्र की महिमा के दृश्यमान प्रतीक की तरह टंगा था। आर्चर जानता था कि मैडम ओलेंस का इनवैलिड से निकलती किसी गली में एक छोटे चौक के पास रहती है और उसने उस इलाके को शांत और लगभग अलक्षित जगह मान रखा था। उसे रोशन करती केंद्रीय भव्यता भूलकर अब किसी विचित्र साहचर्य से वो सुनहरी आभा उस दुनिया को भरने वाली रोशनी बन गई जिसमें वो रहती थी। लगभग 30 वर्षों तक उसका जीवन, वो जीवन जिसे वो विचित्र रूप से लगभग नहीं जानता था, इसी समृद्ध वातावरण में बहा जो उसके फेफड़ों के लिए पहले ही बहुत गाढ़ा और उत्तेजक लगता था। उसने सोचा, वे कौन से नाट्य गृह गई होंगी, कौन से चित्र देखे होंगे, किन वैभवशाली घरों में जाती रही होंगी, किन से बात की होंगी, और शिष्टाचार के पुराने ढांचे में रहने वाले सामाजिक लोग जो विचार, जिज्ञासाएं और बिंब लगातार गढ़ते हैं। और अचानक उसे एक युवा फ्रांसीसी की बात याद आई। आह, अच्छी बातचीत, दुनिया में उसके जैसा कुछ नहीं है ना। आर्चर ने लगभग 30 साल से न रिवियर को देखा था न उनकी खबर सुनी। ये तथ्य बताता था कि मैडम ओलेंस्का के जीवन से वो कितना अनजान था।
आधा जीवन उन्हें अलग किए हुए था और उसने वे लंबे वर्ष ऐसे लोगों के बीच बिताए जिन्हें वो जानता तक न था, ऐसे समाज में जिसका वो धुंधला अनुमान भर लगा सकता था, ऐसे परिवेश में जिसे वो कभी पूरी तरह न समझ पाता। उस दौरान वो उसकी जवानी को स्मृति में संजोए जीता रहा, पर उसके पास निश्चय ही और ठोस साथी रहे होंगे। शायद उसने भी उसे स्मृति की तरह संजोया हो, पर ऐसी स्मृति किसी छोटे अंधेरे प्रार्थना घर में रखी धरोहर की तरह रह जाती है, जहां रोज प्रार्थना का समय नहीं मिलता। वे इनवैलिड चौक पार कर इमारत के साथ जाती एक गली पर चल रहे थे। अपने शानदार इतिहास के बावजूद वो शांत इलाका था और ये दिखाता था कि पेरिस कितनी समृद्धि संजोए है, और ऐसे दृश्य कुछ ही लोगों और उदासीनों के लिए बचे रह जाते हैं। दिन कोमल गोधूली में ढल रहा था, कहीं कहीं पीली बत्तियां जल उठी थीं, और वे जिस छोटे चौक में आए वहां राहगीर कम थे।
डलास फिर रुका और ऊपर देखा। यही होगा, उसने पिता की बाह में बाह डालते हुए कहा। इस हरकत से आर्चर असहज नहीं हुआ और दोनों ने साथ मिलकर घर की ओर देखा। इमारत आधुनिक थी और उसमें कोई खास विशेषता न थी, पर खिड़कियों से भरे चौड़े क्रीम रंग के अग्रभाग पर सुंदर बनी बालकनियां थीं। चौक के चेस्टनट पेड़ों की फुनगियों के ऊपर लटकी एक बालकनी पर पर्दा अब भी गिरा हुआ था।
मानो सूरज अभी-अभी वहां से गया हो। कौन सी मंजिल होगी, डलास ने अंदाजा लगाया और गाड़ी द्वार की ओर बढ़कर उसने दरबान की कोठरी में सिर डाला और लौटकर बोला, पांचवी मंजिल, शायद पर्दे वाली वही बालकनी। आर्चर तीर्थ यात्रा के अंत पर पहुंचे व्यक्ति की तरह निश्चल खड़ा ऊपरी खिड़कियों को देखता रहा। पापा, 6 बजने वाले हैं, आखिर बेटे ने याद दिलाया। पिता ने पेड़ों के नीचे की खाली बेंच की ओर नजर फेरी। मैं जरा वहां बैठूंगा, उसने कहा। क्यों, तबीयत ठीक नहीं, बेटे ने चौंक कर पूछा। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ऊपर जाओ। डलास उलझन में उसके सामने ठिठक गया। पर पापा, सचमुच नहीं आएंगे? पता नहीं, आर्चर ने धीरे से उत्तर दिया। आप नहीं गए तो वे नहीं समझेंगी। तुम जाओ बेटा, शायद मैं पीछे आ जाऊं।
डलास ने धुंधलके में देर तक पिता को देखा। पर कहूं क्या,
मित्र तुम्हें हमेशा पता होता है क्या कहना है। पिता मुस्कराया। ठीक है, कह दूंगा कि आप पुराने जमाने के हैं, लिफ्ट पसंद नहीं, इसलिए 5 मंजिल पैदल चढ़ेंगे। पिता फिर मुस्कराया। कह देना कि मैं पुराने जमाने का हूँ, इतना काफी है। डलास ने उसे एक बार और देखा, अविश्वास का इशारा किया और मेहराबदार प्रवेश के नीचे ओझल हो गया। आर्चर बेंच पर बैठ गया और पर्दे वाली बालकनी को देखता रहा। उसने हिसाब लगाया कि बेटे को 5वीं मंजिल जाने, घंटी बजाने और बैठक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने डलास को आत्मविश्वासी चाल और मोहक मुस्कान के साथ उस कमरे में जाते देखा और सोचा कि जो कहते हैं उसका बेटा पिता जैसा लगता है, वे सही है या नहीं। उसने कल्पना करनी चाही कि कमरे में पहले से कौन होंगे। मिलने जुलने के इस समय कई लोग होंगे और उनमें एक पीली काले बालों वाली स्त्री होगी जो तेजी से सिर उठाएगी, आधी उठ खड़ी होगी और 3 अंगूठियों वाला लंबा पतला हाथ बढ़ाएगी। उसने सोचा कि वे अंगीठी के पास सोफे के कोने में बैठी होंगी और पीछे की मेज पर अजेलिया के फूल होंगे।
मेरे लिए ऊपर जाने से यही रहना अधिक वास्तविक है, अचानक उसने खुद को बुदबुदाते सुना।
और वास्तविकता की उस आखिरी छाया के मिटने के डर से मिनट बीतते रहे, फिर भी वो बेंच पर बैठा रहा। गहराते अंधेरे में देर तक बैठा रहा, बालकनी से नजर हटाए बिना। आखिर खिड़कियों में रोशनी हुई और एक नौकर बालकनी में आया, पर्दा समेटा और खिड़कियां बंद कर दी, मानो यही वो संकेत हो जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। न्यूलैंड आर्चर धीरे से उठा और अकेला अपने होटल की ओर चल दिया।